नूर के चेहरे पर उलझन पड़ गई। क्या मतलब है आपका? और जब आपने किसी और को नहीं बताया तो मुझे क्यों बता रहे हैं? फैजान ने उसकी तरफ देखा, बहुत प्यार से, शायद इतना कि खुद उसे भी एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहा था। क्योंकि आपको मेरी बेईमानी पर यकीन नहीं आया, उसने धीरे से कहा। मुझे लगा शायद आपको सच बता देना चाहिए। दुनिया में कोई तो होता है ना जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, जो अब तक मेरे पास नहीं था। नूर कुछ पल चुप रही। आप सचमुच चाह रहे हैं? उसने धीरे से पूछा, क्योंकि फैजान बता चुका था कि वो यहां से जाने वाला है। अब इस पूरे माहौल को और उलझाने वाली थी। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बनते हैं, और शायद उन दोनों के बीच भी कुछ ऐसा ही बनने लगा था। अरमान गुस्से में अपने घर से निकला और सीधा सादिया के घर पहुंच गया। सादिया लॉन में टहल रही थी, हाथ में फोन था और चेहरे पर झुंझलाहट। अरमान को देखते ही उसने तंज कसा, क्या हुआ, आज तुम्हारी ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद है क्या? उसका इशारा साफ था, नूर आज उसके साथ नहीं गई थी। अरमान ने आंखें तरेरी, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग को सर्विस की जरूरत है। सादिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। तुम्हारे दिमाग की ट्यूनिंग सही नहीं है, इसलिए तुम्हें सबका दिमाग खराब लग रहा है। दोनों की बहस बढ़ने ही वाली थी कि तभी रेहाना बेगम की आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्यों बहस कर रहे हो? दोनों एकदम शांत हो गए। हम बहस नहीं कर रहे, सादिया ने तुरंत कहा, फिर जैसे उसे कुछ याद आया। वैसे अरमान अभी तक नूर को लेने नहीं गए, वो लेट हो गई है। क्या, नूर अभी तक नहीं आई? अरमान के चेहरे पर चिंता आ गई। रेहाना बेगम ने सहजता से कहा, आ जाएगी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन अरमान बेचैन था। मगर वो किसके साथ आएगी, आप उसे फोन करके पूछिए। उधर नूर टैक्सी से उतरी। फैजान ने दरवाजा खोलते हुए कहा, आप जाएं। नूर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। तभी पीछे खड़ी गाड़ी में बैठे रेहान की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। उसने देखा था कि नूर टैक्सी से उतरी थी और पीछे एक लड़का बैठा हुआ था जिसे वो नहीं देख सका था। उसे लगा कि शायद वो किसी क्लासमेट के साथ आई है। नूर उतर कर चली गई, फैजान नहीं उतरा था, वो टैक्सी में आगे चला गया। रेहान वहीं गाड़ी में बैठा रह गया, सोचता हुआ। उसके दिमाग में वही पुरानी बात घूम गई। नूर घर के अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ थी तुम? अरमान ने तुरंत सवाल किया। नूर कुछ कहती उससे पहले ही रेहाना बेगम बोली, कहाँ से क्या मतलब, यूनिवर्सिटी से आ रही है? लेकिन अरमान रुका नहीं, मगर कैसे आई, किसके साथ आई? नूर पहले से ही उससे नाराज थी। उसने सीधा जवाब दिया, मेरी मर्जी, जैसे आई बस आ गई। रेहाना बेगम ने उसे टोका, नूर ये क्या तरीका है बात करने का? नूर ने बिना झिझक कहा, मैं फैजान के साथ आई हूं, टैक्सी में। छुपाने जैसा कुछ था नहीं, बस वो अरमान को बताना नहीं चाहती थी। तभी रेहान अंदर आया और बोला, झूठ बोल रही है। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। ये मेरे साथ आई है, उसने कहा। अरमान ने तुरंत पलटकर पूछा, आप तो ऑफिस में थे, आपके साथ कैसे आ सकती है? रेहान ने हल्का से रुककर जवाब दिया, मैं यूनिवर्सिटी गया था, असल में वो नूर को लेने गया था, लेकिन वो उससे पहले ही फैजान के साथ निकल चुकी थी। और यही बात, मैं अंदर जाती हूँ, नूर ने धीमे से कहा और बिना किसी की तरफ देखे अंदर चली गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रेहान ने झूठ क्यों बोला, और वो चाहकर भी सबके सामने उसे टोक नहीं पाई। रुको नूर, पीछे से रेहान की आवाज आई। नूर रुक गई लेकिन मुड़ी नहीं। आपने झूठ क्यों बोला, उसने सीधा सवाल किया, मैं तो आपके साथ नहीं आई थी। रेहान कुछ कदम आगे बढ़ा, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम आई थी, क्लासमेट, दोस्त, कौन था वो? नूर एक पल के लिए खामोश हो गई। उसे अब समझ आ गया था कि रेहान को ये नहीं पता कि टैक्सी में उसके साथ फैजान था, और शायद ये बात बताना सही भी नहीं होगा। घर में पहले ही फैजान के नाम पर बहुत बवाल हो चुका था। मेरा क्लासमेट था, उसने धीरे से कहा। दोस्त भी है, रेहान ने तुरंत पूछा। नहीं, नूर ने नजरें झुका ली। रेहान हल्का सा मुस्कुराया, तो फिर तुमने घर वालों से झूठ क्यों बोला कि तुम फैजान के साथ आई हो? नूर चौंक गई, उसे खुद एहसास हुआ कि वो अपनी ही बातों में उलझती जा रही है। तभी पीछे खड़ा अरमान ये सब सुन रहा था। वो असल में नूर से सुबह के अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने आया था, लेकिन अब उसके कदम वहीं थम गए। रेहान के दिमाग में सवाल घूमने लगे, अरमान के साथ इसका रिश्ता, साकेत का नाम भी बीच में, अब ये नया लड़का और फैजान की भी साइड लेती है। नूर का किरदार उसे और भी रहस्यमयी लगने लगा। चलो कोई बात नहीं, रेहान ने आखिर कहा जब नूर चुप हो गई। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नूर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। पीछे अरमान वहीं खड़ा सोचता रह गया, और रेहान के मन में एक अलग ही ख्याल आया, अगर ये किसी को मना नहीं करती तो शायद मेरे लिए भी रास्ता खुला है। उसकी आंखों में अब सवाल कम और इरादे ज्यादा नजर आ रहे थे। अरमान वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक अजीब सा पछतावा उठ रहा था। काश सुबह उसने नूर से ठीक से बात की होती तो उसे किसी और के साथ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद उसे छोड़ने भी जाता और लेने भी। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। रात काफी हो चुकी थी। जुबेदा बेगम बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। नासिर खान उनका फोन नहीं उठा रहे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। वो जल्दी से माहिरा के कमरे की तरफ बढ़ी। माहिरा, उनकी आवाज में घबराहट थी। तुमने अपने डैड से मेरे बारे में क्या कहा? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? जुबेदा बेगम को जाते वक्त का वो मंजर याद आ गया। नासिर खान अब माहिरा साथ बैठे थे और वो रो रही थी। उनके दिल में शक और डर एक साथ जाग उठा। कहीं माहिरा ने मेरी शिकायत तो नहीं लगा दी? उधर नासिर खान बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर से निकल चुके थे। उन्होंने जुबेदा से मिलना भी जरूरी नहीं समझा, जैसे उनके पास कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। उनके कदम भारी थे और दिल उससे भी ज्यादा। क्या मैंने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? ये ख्याल बार बार उनके दिमाग में गूंज रहा था। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वक्त उनके हाथ से निकल चुका था। मैंने कुछ नहीं कहा, माहिरा ने नजरें झुकाते हुए जल्दी से बात खत्म करनी चाही। जुबेदा बेगम ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर यकीन नहीं था। तभी अरमान भी वहां आ गया। क्या हुआ मॉम? उसने दोनों को देखते हुए पूछा। जुबेदा बेगम ने परेशान लहजे में कहा, पता नहीं इसने तुम्हारे डैड से मेरे खिलाफ क्या कहा है, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अरमान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बात को हल्का करने की कोशिश की। बिजी हो गए होंगे मॉम, कोई बात नहीं। उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ, जुबेदा बेगम ने तुरंत कहा। वो अगर बिजी भी होते हैं तो कॉल बैक जरूर करते हैं, हमेशा। अब उनके लहजे में बेचैनी के साथ साथ गुस्सा भी था, और वो गुस्सा सीधा माहिरा पर निकल रहा था। माहिरा चुप खड़ी रही। कोई बात नहीं मॉम, आ जाएगा कॉल, अरमान ने फिर से बात खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में भी हल्की सी गंभीरता आ गई थी, जैसे उसे भी अब कहीं न कहीं कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जहां हर किसी के मन में अपने अपने सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मॉम, आप पैनिक हो जाती हैं, बोलने से पहले सोचती भी नहीं, अरमान ने गुस्से में कहा। वो साफ तौर पर परेशान था। मैं पैनिक हो जाती हूँ, जुबैदा बेगम ने भी गुस्से में जवाब दिया। हाँ मॉम, उस दिन आपने नूर पर इल्जाम लगाया कि उसने मुझे जहर देने की कोशिश की, और अब आप फैजान।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग दीजिए। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।